ஓம் சாந்தி. सर्वप्रथम आप सबको आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की या श्री कृष्ण जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां बधाइयां बधाइयां. बाबा ने हम सब बच्चों को बहुत सुंदर ये बात सुनाई है कि बच्चे अब कृष्ण का कृष्ण की दुनिया आई की आई है ना, और उसी भावना से हम सभी पुरुषार्थ में लग गए. क्योंकि किसकी भावना नहीं होगी जो श्री कृष्ण की दुनिया में जाए, श्री कृष्ण के संग खेले, श्री कृष्ण के साथ रास रचाए. और ये भी बाबा हम बच्चों को कहते हैं, संगम युग में भी हम सभी उस रास का भी अनुभव करते हैं, तो उस आनंद का भी अनुभव करते हैं. तो हर एक लीला जो गाई हुई है उसका प्रत्यक्ष स्वरूप हमारा संगम युगी जीवन है. क्योंकि वास्तव में ये और किसी की कहानी नहीं है, लेकिन वही देवकुल की आत्माओं की कहानी है. तो एक श्री कृष्ण की कहानी नहीं कहेंगे, लेकिन हम सब देवकुल की आत्माओं की ये कहानी है. और इसीलिए श्री कृष्ण को दिखाते ही है कि देवकी और वासुदेव की संतान है, देवकी और वासुदेव. देवकी माना जो देव कुल की आत्माएं, जो देव कुल की आत्माएं जब सीढ़ी नीचे उतरते उतरते बहुत खुश मौज में थे, लेकिन जैसे ही आकाशवाणी हुई तो कंस ने क्या किया, अर्थात द्वापर युग से वो देवकुल की आत्माएं बंधन में आने लगी. और इसीलिए कंस माना जो अहंकार का प्रतीक कहो या बुराइयों की अति जब होने लगती है, तो उसने उन देवकुल की आत्माओं को कहां डाल दिया, जेल में डाल दिया. तो देवकी और वासुदेव जो देवता कुल के थे, वो देवता कुल की आत्माओं को जेल में डाल दिया. और वो भी कितने ताले में, दिखाते हैं 8 ताले में डाल दिया. तो इसी तरह जैसे ही हम स्वर्ग में वो आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन द्वापर युग के बाद हमारी हालत भी क्या हुई, तो दिन प्रतिदिन एक एक ताले बढ़ते गए, एक एक जेल के दरवाजे बढ़ते गए, ताकि वो 8 तालों में बंद आत्मा जो बाहर निकल ही ना सके, छूट ही ना सके. ये देवकुल की आत्माओं की हालत है आज. तो वो 8 जेल के दरवाजे, 8 ताले कौन से हैं? तो 8 ताले हैं, 8 दरवाजे जो जेल के हैं. तो सबसे पहला बंधन इस संसार के अंदर अगर देखा जाए, तो 8 प्रकार के बंधन में फंस गई आत्मा. तो पहला बंधन ये तन का बंधन. आए दिन तन के अंदर कोई ना कोई आकर्षण की उत्पत्ति, कभी अपनी देह की आकर्षण में फंस जाते, कभी दूसरों की देह की आकर्षण में फंस जाते, तो ये पहला बंधन जो है आत्मा के लिए, ये देह का आकर्षण, तन का आकर्षण। और उसी कारण से उस आकर्षण वश जब मनुष्य अपने जीवन को जीने लगता है, तो नेचुरल है वो बंधन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा बंधन है मन का बंधन। आज मनुष्य का मन अनेक प्रकार की भावनाएं, विकृतियों के बंधन में आ जाता है। कभी कैसी मन की स्थिति है, कभी कैसी मन की स्थिति है, कभी मन के अंदर कौन सी विकृति उत्पन्न हो रही है, कभी कौन सी विकृति उत्पन्न हो रही है, और उस कारण मनुष्य का मन जो है बंधन में बंधता जा रहा है। तो दूसरा बंधन मन का बंधन है। तीसरा बंधन है धन का बंधन। आज जिस तरह से व्यक्ति धन भी कमा रहा है, वो धन जो आता है परिवार के अंदर अनेक प्रकार की मुसीबतों को लेकर के आता है। कहा जाता है जिस रास्ते से आया है वही रास्ते से जाना है, भोगना तो उतना ही है जितना नसीब में है। उस धन के द्वारा सुख भोगना तो उतना ही है जितना नसीब में है, बाकी जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से जाता है। इसीलिए आज दुनिया के अंदर जब करप्शन के माध्यम से, रिश्वतों के माध्यम से धन आता है, वो सुख का अनुभव नहीं कराता है। सुख उतना ही मिलता है जितना नसीब में था, बाकी सारा धन बह जाता है, वापस निकल जाता है, तो सुख का अनुभव नहीं कराता है। और ही कभी कभी पैसा बंधन में बांधता है वो धन, जो उसके कारण कहां से कहां पहुंचा देता है व्यक्ति को, काल कोठरी में ही पहुंचा देता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे रास्ते से धन आना ही नहीं चाहिए जो हमें दुख दर्द तकलीफ की अनुभूति कराए। चौथा बंधन है संबंधों का बंधन, या दूसरे शब्द में कहे तो जन का बंधन। तन मन धन जन, संबंधों का बंधन। कि आज जो भी संबंधों में मोह है, जितना व्यक्ति का मोह का बंधन बनता जाता है संबंधों में, उतना वो अंदर ही अंदर क्या होता जा रहा है, फंस रहा है। वो मोह के बंधन में आकर दुख का अनुभव भी करता है लेकिन छूटता भी नहीं है। तो संबंधों का बंधन, ये विकारों का बंधन है कि जहां मोह है, आसक्ति है, उस कारण से वो संबंध भी आज दुख देने वाले बन गए, बंधन का अनुभव कराता है। छूटना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पा रहे हैं। पांचवा बंधन प्रकृति का बंधन। चलो बाकी सब ठीक है, तन भी स्वस्थ है, मन भी अच्छा है, धन भी सुखदायी है, अच्छी तरह से रह रहे हैं, लेकिन प्रकृति का प्रकोप आ गया, कहीं सुनामी आ गई उसमें बह गया, कहीं भूकंप आया उसमें, एक दिन में करोड़पति से रोड़पति बना देती है प्रकृति भी, तो ये प्रकृति का भी बहुत बड़ा बंधन हो गया। पांचवा बंधन, फिर छठा बंधन कर्मों का बंधन। ये कर्मों का बंधन भी बहुत जबरदस्त है, आत्मा को बहुत बांध के रखता है। ये कर्मों के बंधन से भी हम छूटना चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो जितना कर्म गलत है व्यक्ति के, विकारों के वशीभूत है, कर्म बंधन उतना बढ़ता जाता है। और आठवां बंधन है समय का बंधन। आज समय ने भी बांध के रखा है, बहुत पुरुषार्थ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है, समय के बंधन में है। बहुत कुछ करने की इच्छा है, भावना इतनी ऊंची है, लेकिन टाइम, समय मिलता नहीं है, समय पर कर नहीं पाते हैं, समय होने के बावजूद भी नहीं होता है, तो समय का भी बंधन हो गया। तो ये आठ बंधन ने उस देव कुल की आत्माओं को, वासुदेव को, जो देवी देवता थे, उनको बांध करके अपनी जेल में बंधन में रखा है। और इसीलिए जब ऐसे बंधन में इंसान बंध जाता है तो जेल ही है, कारागर ही है, जहां से बाहर निकलना चाहता है लेकिन मार्ग मालूम नहीं है। तब कहा, एक दिन साक्षात्कार हुआ कि भगवान ने कहा मैं इस सृष्टि पर आ रहा हूं, और उसमें भी श्री कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण जिस तरह दुनिया के अंदर चार राम दिखाते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम गटगट में लेटा, आत्मा राम हर एक शरीर के अंदर है गटगट में लेटा, तीसरा राम जगत से न्यारा, परमात्मा भी राम है, और चौथा राम शकल पसारा, जिसके शकल पर राम नाम लगाया हुआ है, जिसके देह का नाम राम है, वो भी राम है ना। तो जिस तरह दुनिया के अंदर चार राम की कहानी मिक्सचर हो गई, इसी तरह दुनिया के अंदर दो कृष्ण भी है, और इसीलिए ये दो कृष्ण की कहानियां भी कहीं ना कहीं मिक्स हो रही है। कृष्ण का शाब्दिक अर्थ अगर लिया जाए तो कृष्ण माना आकृष्ट करने वाली मूर्ति, आकृष्ट इति माना जो आकर्षण करने वाली मूरत। तो आकर्षण करने वाली मूरत इस संसार में सिर्फ दो है, एक श्री कृष्ण जो संसार का, सतयुग का, वैकुंठ का फर्स्ट प्रिंस जिसको कहा, और दूसरा परमात्मा को भी कृष्ण कहा जाता है। सबसे आकर्षणमय मूरत वह दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप की है, इसीलिए शिव को भी कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर आकर्षणमय मूरत अगर है तो वो सत्यम शिवम सुंदरम की भी है, वो भी कृष्ण है। तो दो कृष्ण है, तो इसीलिए जब देवकी को साक्षात्कार होता है तो सबसे पहले तो लाइट का साक्षात्कार हुआ, और यही मैसेज मिला मैं इस संसार में आ रहा हूं। तो शिव बाबा लाइट स्वरूप का वो साक्षात्कार था कि कलयुग अंत में जब आत्माएं इतनी बंधन का अनुभव करने लगी तो वो परमात्मा सबसे आकर्षणमय मूरत, वो सत्यम शिवम सुंदरम, इस संसार में अवतरित होते हैं। और फिर ये भी हमें कहा कि इसके बाद श्री कृष्ण की दुनिया आने वाली है, इसलिए विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार कराया देवकी को कि इस संसार में मैं भी आ रहा हूं। यानी ये सृष्टि परिवर्तन का समय होगा और तब मैं भी इस संसार में आऊंगा। तो दोनों का साक्षात्कार इकट्ठा होने कारण समझ में नहीं आया। जैसे ब्रह्मा बाबा को भी जब दिव्य लाइट का साक्षात्कार हुआ और वो दिव्य लाइट ने प्रवेशता की, तो उसके बाद कहा तू मेरा ही स्वरूप है। विष्णु चतुर्भुज का ही साक्षात्कार हुआ कि तुम ही वो बनने वाले हैं। तो इसी तरह वो देव कुल की आत्माओं को, देव की और वासुदेव देव कुल की आत्माओं को ये साक्षात्कार हुआ, एक तो कृष्ण का यानी शिव बाबा का और फिर श्री कृष्ण की दुनिया आ रही है। बाबा ने यही तो हमें ज्ञान सुनाया कि पहले शिव बाबा का साक्षात्कार करते ही कि ये देवी दुनिया अभी आने वाली है, श्री कृष्ण की दुनिया आने वाली। और श्री कृष्ण तो एक आशा बंद गई, लेकिन आने में थोड़ा टाइम लगेगा। श्री कृष्ण को आने में टाइम लगेगा, आठवीं संतान इसलिए कहा, आठवीं संतान, आठ पहर दिन का दिखाते हैं। तो संगम युग को ब्रह्मा का एक दिन दिखाया है कि अमृत वेले से लेकर 100 साल का जो संगम युग दिखाया है, तो वो आठ पहर के बाद ही श्री कृष्ण आएगा। तो तब तक थोड़ी धैर्यता रखनी होगी। तब तक शिव बाबा कहते हैं मैं आकर के ये एक एक ताला तोड़ता हूँ, समाप्त करता हूँ। तो इसीलिए जब शिव बाबा का अवतरण होता है तो शिव बाबा का अवतरण कहाँ हुआ, तो श्री कृष्ण के साधारण स्वरूप में। इसलिए एक साधारण सा बच्चा जन्मा ऐसे दिखाते हैं और कहा एक एक ताले टूटने लगे। तो शिव बाबा जैसे ही संसार में अवतरित हुए, ब्रह्मा बाबा के जीवन के भी जो ताले थे, ताले टूटने लगे। तो सबसे पहला तन का ताला कैसे टूटा, तन के आकर्षण का, दैहिक आकर्षण का ताला तोड़ने के लिए बाबा ने हम बच्चों को यही पाठ पढ़ाया कि बच्चे देह को न देखो, देही आत्मा को देखो, उस चैतन्य स्वरूप आत्मा के दिव्यता को देखो। और ये देखो कि हर एक में आत्मा है। जब हर एक में आत्म दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक भाव विकसित होगा तो देह के आकर्षण से हम परे हो जाएंगे। तो ये पहला ताला टूटा, ये पहला ताला तोड़ने की विधि है। दूसरा, मन का जो बंधन है, जो मन अनेक प्रकार की नेगेटिव भावनाओं में, विचारों में आज चक्कर मार रहा है, व्यर्थ विचार खूब चल रहा है, तो उस मन के बंधन को समाप्त करने के लिए बाबा ने हमें कहा बच्चे मन मना भव हो जाओ, मन को मुझ में लगा दो। जितना मन मुझ में लगता जाएगा, बाबा उस मन के अंदर सामर्थ्य भरता जाएगा, मन को सशक्त करता जाएगा और उस सशक्त समर्थ मन से ही सकारात्मक विचार शुरू होंगे और व्यर्थ विचार, नकारात्मक विचार समाप्त हो जाएंगे, ये ताला टूट जाएगा। तीसरा, धन का बंधन जो महसूस हो रहा है, उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को यही विधि बताई, बच्चे धन को जितना सफल करेंगे, सफलता को पाएंगे। सफल करो और सफलता पाओ, ये विधि बता दी कि जिस विधि के आधार से ही धन बंधन का अनुभव नहीं कराएगा, लेकिन उस बंधन से भी हमें मुक्त करेगा। फिर चौथा, संबंधों का जो बंधन है, उस संबंधों के बंधन से मुक्त होने के लिए बाबा ने हमें विधि बताई, न्यारा और प्यारा रह करके कर्म करो। रहना परिवार में ही है, परिवार को छोड़ना भी नहीं है, रहना भी वहां है, लेकिन जो मोहवश कर्म हो रहे हैं, उस मोह या आसक्ति या ममता के कारण, मोह ममता में फंसे हुए, उसके बदले न्यारे और प्यारे होकर के गृहस्थ को भी इतना सुंदर कमल पुष्प के समान हमारा गृहस्थ बन जाए। रहना भी वहां है लेकिन अलिप्त निर्लिप्त जीवन हो हमारा। तो ये है संबंधों के मोह के बंधन को तोड़ने की विधि। फिर पांचवा है प्रकृति का बंधन। तो प्रकृति के प्रति बाबा ने यही कहा कि ये प्रकृति को भी आपको ही शुद्ध करना है, ये प्रकृति के प्रति भी सकाश देनी है, और जितना ये प्रकृति को सकाश देते जाएंगे, ये प्रकृति आपके अधीन होती जाएगी और आप प्रकृति पति बनते जाएंगे। प्रकृति को दासी बनाना है, प्रकृति के अधीन होकर के नहीं चलना है, लेकिन प्रकृति को जब दासी बना देंगे तो वो प्रकृति वहां तक आएंगी लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। सुनामी की लहरें भी अगर आएंगी वहां तक आएंगी, रुक जाएगा पानी, आप तक नहीं पहुंचेगा। अभी जब महाराष्ट्र में इतनी बाढ़ आई थी तो कई ब्राह्मण बाल बच्चों के ये समाचार मिले कि घर के आंगन तक पानी आया लेकिन वहां आके रुक गया। ये अनुभव तो जिसने योग के द्वारा प्रकृति को भी, इसीलिए आजकल हम देखते हैं कि जो ग्राम विकास वाले हैं क्या करते, प्रकृति को भी हमें सकाश देनी है। जितना प्रकृति को सकाश देते जाएंगे वो प्रकृति हमारे लिए दुखदायी कभी नहीं बनेगी। अच्छे वाइब्रेशंस दो तो वो प्रकृति भी आपकी दासी हो जाएगी और आपको कभी भी उस प्रकृति के उसके कारण प्रकृति विपत्ति का अनुभव नहीं कराएंगी। प्रकृति अधीन हो करके, आपकी दासी हो करके आपको सहजता प्रदान करेगी। तो ये प्रकृति के ताले को तोड़ने की विधि है कि उसको भी सकाश दो, शुभ भावना के वाइब्रेशन दो। फिर कर्मों का बंधन, बहुत बड़ा बंधन है ये भी एक। तो कर्मों का बंधन का ताला तोड़ने के लिए बाबा ने हम बच्चों को विधि बताई, बच्चे सदा श्रेष्ठ कर्म करते चलो। जितना श्रेष्ठ कर्म हमारा होता जाएगा, वो श्रेष्ठ कर्म का बल ऐसा है जो जितने भी विकर्म हुए हैं उन विकर्मों को समाप्त करने की शक्ति रखता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे जितना ये ब्राह्मण जीवन के अंदर श्रेष्ठ कर्म कर सकते हो, ऐसा श्रेष्ठ कर्म जिससे दुआओं की प्राप्ति हो, तो वो दुआओं की प्राप्ति हमारे कोई भी कर्म हमें बंधन का अनुभव कराने वाला नहीं बनेगा, लेकिन वो दुआओं की शक्ति उन कर्म बंधनों को भी सहज तोड़ने वाला अनुभव कराएगा। इसलिए बाबा कहे, बच्चे ऐसे सुख देने वाले कर्म करो, जितना अनेक आत्माओं को हमारे द्वारा सुख मिलेगा इतना श्रेष्ठ कर्म होगा, तो वो आत्माओं की दुआ हमारे उन कर्म बंधन को भी बहुत सहजता से काटता जाएगा। और आठवां बंधन, समय का बंधन। समय के विषय में बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है कि बच्चे तुम ही त्रिकालदर्शी हो, मास्टर त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानते हो तुम, आदि मध्य अंत को जानते हो। और जब आदि मध्य अंत को जानते हो तो आदि मध्य अंत को जानते हुए हर कदम उठाना है। तो कहीं पर भी आप असफल होंगे ऐसा नहीं होगा। जो आदि मध्य अंत को सोच समझ करके कर्म करता है, समय को जानते हुए कि ये समय की मांग क्या है, ये समय की पुकार क्या है, ये जब जानते हुए आप कर्म करेंगे, जीवन जिएंगे, तो वो समय सुख देने वाला बन जाएगा। क्योंकि आदि मध्यंत को जानते हुए आप कर्म कर रहे हैं। तो तीनों कालों को जानते हुए मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर के हर कदम उठाते जाओ। समय को परखो, समय की पुकार सुनो और उसी अनुसार प्रत्युत्तर दो, तो समय आपको आगे बढ़ाने के लिए आएगा। समय आपको कभी पीछे नहीं हटाएगा, लेकिन समय आपको धक्का दे करके भी आगे बढ़ा देगा। ये समय बड़ा बलवान है, इसलिए कहा जाता है समय बड़ा बलवान है। समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है, लेकिन जो समय के विपरीत दिशा में चलते हैं, समय की जो पुकार है उस पुकार को न सुन करके विपरीत दिशा में चलते, उसके लिए समय बड़ा कठोर हो जाएगा। लेकिन जो समय को समझते हुए, तीनों कालों को देखते हुए, जानते हुए, समय की मांग क्या है उसको जान करके उस अनुसार प्रतिउत्तर देता है, तो समय उसको आगे बढ़ा देता है। ऐसा लगेगा हथेली पर वो समय हमें बिठा करके आगे पहुंचा देता है। तो इसीलिए ये आठों प्रकार के ताले तोड़ने की विधि बाबा ने हम बच्चों को दे दिए है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते अभी भी हमें बंधन है, हमारे लिए कोई बंधन है नहीं। या तो हम वो चाबी को यूज नहीं कर रहे हैं, या तो दरवाजा सिम सिम खुलता जाए, ऐसे हमारे कर्म नहीं है। तो इसीलिए जैसे ही शिव बाबा क्या अवतरण हुआ, साधारण स्वरूप में के सारे ताले टूट गए। और सारे ताले टूटने के बाद उन्हें कहा कि इस पार से उस पार ले जाओ, इस पार से उस पार, कलियुग की सृष्टि से उस पार हमारे लिए संगम युग, और संगम युग का भी बहुत समय बीत गया, तो इस पार से उस पार। लेकिन उस पार जाने में यमुना नदी उफान पर थी, और जब यमुना नदी उफान पर थी तो पानी यहां तक आ रहा था, लेकिन वास्तव में वो पानी भी इसलिए आ रहा था कि वो भी उसके चरण स्पर्श करना चाहता था, कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहता था। इसलिए दिखाते हैं कि कृष्ण ने जैसे ही पैर बाहर निकाला और यमुना नदी ने उसके पैरों को स्पर्श किया कि एकदम पानी शांत हो गया। भावार्थ ये कि जो प्रवाह है, यमुना नदी माना एक प्रवाह, तो हमारे भीतर कौन सा प्रवाह है, भावनाओं का प्रवाह किस दिशा में जा रहा है। और ये भावनाओं का प्रवाह कभी कभी नकारात्मक उफान पर भी चढ़ता है। क्या करेंगे, फलाने व्यक्ति ने अगर मुझे सहयोग नहीं दिया तो क्या होगा, उसने अगर ऐसा कह दिया तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कितने नकारात्मक विचार। तो भावनाएं उफान पर चढ़ती है, लेकिन जैसे ही बाबा को याद करो, बाबा का स्पर्श उस आत्मा को हुआ कि वो उफान भी क्या होता है, शांत हो जाता है ना। तो इसीलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, बाबा को याद करो, हर प्रकार के नकारात्मक संकल्पों के जो उफान है वो शांत होना ही है। खाली शांत नहीं होता है, लेकिन हमारा मन इतना एकाग्र स्थिर हो जाता है जो उसी में से मार्गदर्शन मिलता है, आगे का रास्ता मिल जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते आगे का रास्ता भी आपके पास ही है ना। तो इसीलिए ये उफान को शांत करो, साथ ही साथ क्या करो, मन को शांत एकाग्र कर लो। जब एकाग्रता अंदर में आ जाती है तो अपने आप मार्ग मिल जाता है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी युक्ति बाबा की टचिंग से आने लगती है। लेकिन उसके लिए जैसे कहा कि बारिश भी हो रही तो कृष्ण के ऊपर छत्र छाया नाग का था, और नाग क्या है, पांचों विकारों को दासी बना दिया, पांचों विकारों को सहयोगी बना दिया, जो वही हमारी रक्षा करने के लिए वहां तत्पर हो जाते हैं जीवन के अंदर। इसीलिए बाबा कहते हैं ये विकारों को परिवर्तन करो। कैसे, पांचों विकारों को परिवर्तन करने की विधि बाबा ने बताई, जो शेष नाग बन करके हमारी रक्षा करने के लिए, तो काम को परिवर्तन करो शुभ कामना में, शुभ कामना हर एक के प्रति, शुभ कामना अंदर से इमर्ज हो। क्रोध को परिवर्तन करो शांति में, शीतलता में। लोभ या आसक्ति को परिवर्तन करो किसमें, आसक्ति अगर रखनी भी है तो बाबा कहे ज्ञान धन की आसक्ति रखो, स्थूल धन की आसक्ति नहीं रखो। ज्ञान धन जितना अंदर में बढ़ता जाएगा, जितना उसकी अंदर में समृद्धि बढ़ेगी, उतना ही आत्मा समृद्ध होने लगेगी, और वो समृद्धि बहुत कुछ आपके पास ले आएगी। धन के पीछे भागो नहीं। लेकिन बहुत सुंदर बात मुझे एक याद आती है कि एक बार एक आर्टिकल में पढ़ रही थी तो उसमें बताया कि ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाई, विष्णु के साथ लक्ष्मी दिखाई, और शंकर के साथ दुर्गा दिखाई है, पार्वती दिखाई है। भावार्थ ये कि ब्रह्मा सृजन करता है, लेकिन जब जीवन का भी सृजन होता है, हमारा एक नया जन्म है, तो नए जन्म का सृजन सरस्वती के साथ किया जाए, अर्थात ज्ञान से उसकी परवरिश किया जाए, तो वो पालना सही पालना है। लेकिन आज दुनिया में लोग कोई भी चीज का सृजन करते हैं, भावना क्या है, भावना क्या है, लक्ष्मी आनी चाहिए। अब ब्रह्मा के साथ लक्ष्मी का कोई मेल नहीं है, इसलिए अगर वो लक्ष्मी आ भी गई तो वो लक्ष्मी दुखदायी बन जाती है। लेकिन बाबा ने इसीलिए कभी लक्ष्मी का आवाहन नहीं किया, लक्ष्मी का आवाहन नहीं किया, सृजन किया, यज्ञ की सृजना की। लेकिन यज्ञ की सृजना करने के बाद भी बाबा ने कहा तुम दाता के बच्चे देना चालू करो, देना चालू करो, लक्ष्मी अपने आप आएगी। पहले ज्ञान से अपनी परवरिश करो। तो सृजन किया, ये नया जन्म मिला, लेकिन नए जन्म की परवरिश सरस्वती जब करती है तो वो संस्कारों को इतना श्रेष्ठ बनाती है, और संस्कार जहां श्रेष्ठ होते हैं तो वहां पालना, जब दूसरी आत्माओं के साथ का व्यवहार जो है हमारा, पालना जो है, परिवार की पालना भी कैसे होती है, तो वहां जहां विष्णु होगा तो वहां लक्ष्मी भी छमछम करके आएगी। सृजन करते ही लक्ष्मी का आवाहन किया तो लक्ष्मी कभी छमछम करके नहीं आएगी, ये याद रखिए। ब्रह्मा के साथ सरस्वती ही है, इसीलिए अपने जीवन का सृजन का आधार ज्ञान। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करना है तुम्हें। जितना हमारा ज्ञान से परवरिश होता है, लक्ष्मी को छोड़ो, लक्ष्मी तो आएगी आएगी, है ना, ज्ञान से परवरिश करो हम अपने अनेकों की, हमारे साथी या परिवार में जो भी है उनके भी ज्ञान से परवरिश करो आप जितना हो सके ज्ञान से। लेकिन ज्ञान भी कैसे, रोज सुबह उठ करके उनको ज्ञान की बातें डोज देते जाओ ये नहीं, वो इरिटेट करता है कईयों को। लेकिन अपने जीवन से वो उस ज्ञान को प्रत्यक्ष करो, वो भी देखना चाहते। आज हर इंसान परिवार के अंदर हर इंसान हर एक की कमी कमजोरी को जानता है, और इसीलिए जब से आप वहां जा रहे हैं, आश्रम जा रहे हैं, सेंटर जा रहे हैं, आप में क्या परिवर्तन आया वो देखना चाहते हैं। अगर आपके स्वभाव में वही गुस्सा, चिड़चिड़ापन, वही इम्पेशंस, यही सब कुछ है तो वो क्या कहेंगे, आपका वहां जाकर फायदा क्या हुआ जो मैं जाऊं। इसीलिए पहले जब वो देखेंगे चेंज आपके जीवन में, आपकी धारणाओं में, आपके मनस्थिति में, आपके चेहरे में, मनोवृत्ति में, आपके कर्म में, तब उनको भी आकर्षण होगा मैं भी जाऊं। तो परिवार की पालना ज्ञान युक्त होकर सरस्वती के साथ किया जाए तो फिर वहां लक्ष्मी जो आएगी वो प्योर लक्ष्मी आएगी, वो इम्प्योर लक्ष्मी नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई भी कार्य का सृजन किया और लक्ष्मी का सीधा आह्वान किया तो वो लक्ष्मी इम्प्योर है, वो प्योर नहीं है। तब जाकर के जो दुर्गुण है वो संहार करेगी दुर्गा, और तब जीवन का परिवर्तन शंकर के माध्यम से हो जाएगा। इसीलिए ये सबको साथ साथ दिखाया है, वास्तव में ये हमारे जीवन से बहुत गहरा कनेक्शन रखता है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा, जब शिव बाबा का अवतरण होता है, देवकी देवकुल की आत्माओं की स्मृति जागृत होती है, और जैसे ही वो स्मृति जागृत हुई के सारे ताले टूटे और सभी विकारों के ऊपर अधिकार प्राप्त कर दिया, और जैसे ही अधिकार प्राप्त किया मोह को परिवर्तन किया प्रेम स्नेह में, और अहंकार को परिवर्तन किया आत्म अभिमानी स्थिति में, तो पांचों विकारों का जब पूर्ण परिवर्तन हो जाता है तब वही शेष नाग बन करके आपकी रक्षा करने के लिए निमित्त बन जाते हैं, और इस तरह से इस पार से उस पार चले गए नंद के यहाँ। क्योंकि आनंद कहाँ है, आनंद कहाँ है, तो कहा नंद के घर आनंद भयो, नंद के घर आनंद भयो। तो शिव बाबा के घर में आनंद नहीं है हा? आज शिव बाबा के घर में आप बैठे हैं तो शिव बाबा के घर में आनंद भयो है कि नहीं। तो उस नंद के घर में हम सभी देवकुल की आत्माएं जब आ जाती है तो आनंद ही आनंद है, यहाँ किसी से कोई और मतलब नहीं है। दुनिया के अंदर जाओ तो मतलब होता है, लेकिन यहाँ आओ तो हर कोई गोप गोपी बन करके घूम रहे, अपनी मस्ती में घूम रहे हैं। यहाँ न घर याद आता है, न बच्चे याद आते हैं, न कोई याद आता, हर कोई अपनी मस्ती में ही घूम रहा है, मस्त है, आनंद भयो बस आनंद ही आनंद है कि नहीं। तो इसीलिए बाबा के घर में जब आ गए, पांचों विकारों के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया, तो वही देव कुल की आत्माएं आज आनंद में झूम रही है, सच्ची गोप गोपियां बन करके आज जो झूम रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे। स्थूल झूमने की बात नहीं है, स्थूलता में जाने की, लेकिन मन आनंद में मगन है, मस्त है, वो गोपी बन गए ही, आत्मा गोपी बन गई, और दुनिया का कोई होश नहीं है यहाँ पर। जब दुनिया का कोई होश नहीं, अपनी मस्ती में घूम रहे हैं, अगर किसी का फोन भी आ जाए तो हाँ हाँ ठीक है, सब ठीक है, हम भी ठीक है, रख दिया फोन, लंबी बात चलती नहीं है, कोई अगर सुनाना भी चाहे फलाने के घर में, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप देख लो, आप लोग कर लो, अभी हम तो यहाँ है, पूरा हो गया है कि नहीं, तो आनंद भयो है कि नहीं। तो इसीलिए आनंद ही आनंद नंद के घर में, और ऐसा ना आनंद ही आनंद जब हर गोप गोपियां महसूस करती है, इसीलिए कहा जाता है अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो कि वो सुख क्या होता है। अति इंद्रिय सुख में झूम रहे आज दुनिया में, अगर एक शादी में 500 लोग भी आ जाते तो कितना कोलाहल हो जाता है, और यहाँ 10,000 15,000 बाबा के बच्चे पहुंच, हर कोई अपनी मस्ती में मस्त है, हर कोई बाबा के साथ मिलन का अनुभव कर रहा है, रास रचा रहा है, और हर कोई आपस में भी संस्कारों की रास हो रही है। किसी की संस्कारों की टक्कर हुई यहाँ पर? किसी की संस्कारों की टक्कर नहीं हुई, क्योंकि सारे ताले टूट गए, अब हम पहुंच गए बाबा के घर में, और जब बाबा के घर में पहुंच गए तो बस रास करो। कहते हैं ना वो गोपियां एक आंख में काजल करती थी, दूसरे आंख में भूल जाती थी, कुछ रखा होता था वो भी याद नहीं रहता था, एक चीज पहनी एक चीज नहीं पहनी, एक कुंडल पहना एक नहीं पहना, ऐसी हालत है ना माताओं की हालत देखो, कुछ लगाया नहीं लगाया, कहीं किसी ने याद दिलाया, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो है ना क्लास में जाना है क्लास में जाना है, पहुंच गए। तो ऐसे नंद के घर में आनंद भयो है ना। अब सोचने की बात है कि श्री कृष्ण के लिए तो बहुत सारी कथाएं सुनी हुई है, और क्या कथाएं सुनी है कि गोपियों के वस्त्र चुराए। अब सोचने की बात है ऐसा अभद्र कार्य कोई कर सकता है दुनिया के अंदर? आज भी दुनिया में नहीं करेंगे तो श्री कृष्ण ऐसा थोड़ी काम करेंगे। लेकिन वास्तव में वस्त्र कौन से चुराए? तो ये देह रूपी वस्त्र, देह अभिमान का वस्त्र चुरा लिया उसने, और जब देह अभिमान का वस्त्र ही खत्म हो गया तो हर आत्मा कितनी खुश है ना। इसलिए कहते जब देह गोपियों के वस्त्र भी चुरा लिया तो भी वो खुश थी। अब इतना अभद्र कार्य करने के बाद भी कोई खुश हो, ऐसा हो सकता है ना? उसकी तो कितनी कंप्लेन हो जाए। लेकिन यहाँ जब हमारा भी देह अभिमान रूपी वस्त्र भगवान चुरा लेता है, उतार देता है, तो हम आत्माएं कितनी चमकने लगती है, सदा खुश होने करके झूमने लगती है, बस आत्मिक स्मृति में ही स्थित हो जाते हैं। फिर कहा मक्खन चुराया, वस्त्र चुराए, फिर वस्त्र कौन से चुराए ये तो समझ में, मक्खन। अब सोचने की बात है कि नंद के घर में इतनी गायें थी, कृष्ण को मक्खन चुराने की जरूरत थी क्या? थी क्या? आज घर में अगर बच्चा है उसको कौन सी चीज अच्छी लगती है तो माँ उसको न देवे ऐसे कभी हो सकता है? जो उसको जाकर दूसरे की गगरिया फोड़नी पड़े और मक्खन छाछ लेना पड़े। इतना अमीर घर का था नंद, तो बड़ा अमीर था, फिर उसने चोरी करके खाने की, ऐसे संस्कार कभी हो सकते हैं? चोरी करके खाने की जरूरत है क्या? उसकी माँ सामने ही रख दे, भाई तू खा ले जितना खाना है ना। तो कहने का भावार्थ के मक्खन माना सार, मक्खन माना ताकत जिसमें होती है, एसेंस। तो इसी तरह जो ज्ञान के सार को यहाँ आते ही क्या करते हैं, जो सभी बहनें आते हैं उनसे ज्ञान के रतन, ज्ञान का मक्खन आपको मिलता जा रहा है, तो वो मक्खन आप चोरी कर करके अपने बुद्धि रूपी गागरी में समा रहे हैं या नहीं समा रहे हैं? तो इसीलिए ये मक्खन आप खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा, हर दीदियों का, दादाओं का, जिसका भी क्लास मिलता है तो क्या मिलता है? मक्खन ही तो मिल रहा है। जो बड़े वरिष्ठ भाई बहनों का क्लास मिलता है, उनका बाबा के साथ का अनुभव का मक्खन मिल रहा है। अच्छा, जिन्होंने दादी को नहीं दिखा, दादियों का अनुभव सुनाया, तो दादियों के माध्यम से जो पालना मिली है उसका मक्खन मिला कि नहीं मिला? मिल रहा है। तो यही तो सारा सार, हमने अनुभव नहीं किया, लेकिन इन बड़ों के द्वारा जो दादियों की पालना मिली, जो बाबा की पालना मिली, वो पालना रूपी मक्खन आपके साथ बांटा जा रहा है। और उसको कहाँ रखते हैं? अपने मटके के अंदर। मटका कौन सा है? गगरी कौन सी है? गगरी कौन सी है? बुद्धि रूपी गगरी। तो बुद्धि रूपी गगरी के अंदर वो सारा मक्खन को क्या करते हैं? भर के रखते हैं। और फिर समय आने पर कोई पत्थर मारता है, भाई वहां जाके आए, कुछ तो बात दो, कुछ तो सुनाओ। तो जब वो पत्थर मारता है तो क्या करते हैं? देते हैं कि नहीं देते हैं? खुशी से देते हैं, है ना? खुशी से देने लगते हैं। तो ये मक्खन अपने अंदर भर करके जाना है, और जितना अपनी बुद्धि रूपी गगरी के अंदर ये मक्खन को भर करके गए, और जितना समय मिले उसको उगारते जाओ, उगारते जाओ, तो मक्खन ताकत का काम करेगा। आत्मा के अंदर शक्ति भरने लगेगा, और शक्ति भर करके अपने आप को सशक्त करता जाएगा। तो इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, तुम्हें ये ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए अपनी गगरी के अंदर जो मक्खन भरा है उसका फिर मनन उगारो, मनन चिंतन करो, तब ये आत्मा की ताकत बने, और फिर सबके साथ बांटो। कृष्ण ने क्या किया? खुद कम खाता था, इधर उधर खाली लगा देता, बाकी सबको बांटता था। खाओ, तुम लोग खाओ। सारे उसके दोस्तों को क्या कहा? तुम लोग खाओ, तुम लोग खाओ, है ना? तो ज्ञान बांटते चलो, जितना बांटते जाएंगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और फिर सभी कंप्लेन करने आए यशोदा मैया को कि भाई ये तो चोरी करता है, हमारी गगरी तोड़ता है, ये करता है। तो उसको पूछा, तुमने खाया? तो क्या कहा? नहीं खाया, मैंने ही माखन खाया, मैं नहीं खाया। दो अर्थ है ना? तो बाबा भी क्या कहते हैं बच्चों को? बच्चे युक्ति युक्त चलो। हाँ, सेंटर पर गए थे मुरली सुनने के लिए, क्लास करने गए थे, तो क्या कहो? मैं नहीं खाया, मैं नहीं खाया मक्खन। अब इसके दो अर्थ निकल गए। तो समझा, जिसने जो समझना था, जिस भगवान ने उसकी बुद्धि को वैसे टच कर लिया, हमने झूठ थोड़ी बोला, उसने ऐसे समझा। फिर उसको बांधा, ओखली से बांधा और कहा मुंह खोल। तो मुंह खोला तो क्या दिखाया? तीनों लोक दिखा दिए। तो बाबा इसीलिए कहा कि जब वो कहते मुंह खोलो, तो मुंह खोल के क्या निकालना है? तीनों कालों का ज्ञान सुनाना चालू करो, तीनों लोकों का दर्शन करा दो उनको, है ना? तीनों लोकों का, तीनों कालों का दर्शन कराते चलो, और जीवन को फिर किस तरह से चलाना है, संस्कार मिलन की रास कैसे करनी है, वो महारास कैसे करनी है, तो उसकी विधि जो बाबा ने हम बच्चों को बताई कि बच्चे सदा ज्ञान की एक एक पॉइंट को, एक एक बूंद को जीवन के अंदर धारण करके अपने संस्कारों में उसको ले आओ। जितना उसको अपने संस्कारों का हिस्सा बना देंगे, वो संस्कार मिलन की रास, और बाबा के साथ भी हमारे महारास, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण। कौन सा कृष्ण? परमात्मा कृष्ण। एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण, वो कृष्ण शिव बाबा, सत्यम शिवम सुंदरम, वो कृष्ण एक एक गोपियों के साथ आज रास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आज रास कर रहा है, महारास। इसीलिए मधुबन में महारास, वहां भी क्या दिखाया भक्ति में भी कि महारास कहाँ हुआ, मधुबन में महारास हुआ। तो मधुबन में ही तो महारास हो रहा है। महारास अगर 15,000 लोगों का महारास एक कृष्ण के साथ हो तो क्या कहेंगे, मधुबन में महारास नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए ये महारास का गायन है। साथ ही साथ बाबा बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे ये महारास शिव बाबा के साथ ही करना, ये नहीं, लेकिन आपस में भी। तो कैसे करना है आपस में, तो विष्णु के चारों अलंकार जो है, इसलिए दो हाथ ऊपर दो हाथ ऐसे नीचे, ऊपर से सकाश लेते जाओ और देते जाओ, लेते जाओ देते जाओ, है ना, रखना नहीं अपने पास में, देते जाना है, बांटते जाना है, जितना देते जाएंगे बढ़ता जाएगा। भावार्थ ये कि आज प्रवृत्ति में रहते हुए, रहना प्रवृत्ति में ही है, प्रवृत्ति को छोड़ना नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति में कैसे रहना है, ये चारों अलंकार हमें सिखाते हैं विष्णु के जब इस तरीके से आप अपने जीवन की परवरिश करो, विष्णु पालना करता है ना, तो हमें अपने गृहस्थ जीवन की पालना कैसे करनी है, तो शंख, सबसे पहले शंख, शंख ध्वनि यानी मुख से जो भी वचन निकले वो बहुत मधुर महावाक्य। इसलिए शंख जब बजता है ना तो उसमें से एक ही ध्वनि निकलती है, कौन सी ध्वनि निकलती है, ओम की ध्वनि निकलती है। यानी हमें भी अपने जीवन की परवरिश जो करनी है, ओम स्वरूप में टिक जाना, आत्म स्वरूप में स्थित होकर के हर वचन का उच्चारण करो, तो वो भी शंख ध्वनि का काम करेगा। देह अभिमान में जब बोलते हैं तो कड़वा वचन निकलता है, देह अभिमान के वश जब बोलते हैं तो दूसरों को दुख भी पहुंचता है। देह अभिमान में आकर के जब कोई भी वाक्य उच्चारण करते हैं तो वो वाक्य कभी कभी कईयों को तकलीफ देता है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को सिखाया कि प्रवृत्ति में कैसे रहना है, जब आपको सबके साथ व्यवहार निभाना है, प्रवृत्ति में रहना है, तो अपने गृहस्थ जीवन को कैसे निभाना है, तो उसके लिए बाबा ने कहा ओम माना अहम आत्मा। तो आत्म स्वरूप में स्थित होकर के आप हर वचन उच्चारण करो, किसी के साथ भी बातचीत करो तो दैहिक भाव में आकर के बातचीत न करो, आत्मिक भाव में स्थित होकर के बातचीत करो। तो उसमें शब्द कैसे निकलेंगे, जो गीता के 17वें अध्याय में कहा है मधुरम प्रियम और कैसे सार युक्त वचन निकलेंगे। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हर वचन अति प्रिय अति मधुर और सार युक्त निकलेगा, एसेंसफुल, जो बाबा कहते हैं एसेंसफुल पावरफुल लवफुल, ऐसे हमारे वचन निकलेंगे आत्म स्वरूप में स्थित होकर के बोलेंगे। दूसरा अलंकार चक्र, स्वदर्शन चक्र सुदर्शन चक्र। स्वदर्शन यानी अपना दर्शन करते चलो, जो बाबा ने आत्म निरीक्षण के लिए हमें बताया है कि दिन के अंत में अपना चार्ट देखो, आज के सारे दिन में मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, मेरे द्वारा किसी को दुख की प्राप्ति तो नहीं हुई। आत्म निरीक्षण करो, स्वदर्शन करो, और अगर दूसरों को देखने की इच्छा हो तो सुदर्शन करो। सुदर्शन माना हर इंसान को बाबा ने कोई न कोई विशेषता रूपी वरदान भी दिए हैं, तो हर आत्मा ब्लेस्ड सोल है, वरदानी आत्मा है। तो जब दूसरों को देखो तो तो पर चिंतन पर दर्शन नहीं करना है, लेकिन क्या करना है? स्वदर्शन और सुदर्शन, अच्छाई का दर्शन करो, अच्छाई का दर्शन करते चलो। जब ऐसा सुदर्शन होने लगेगा, हर एक की विशेषताओं को देखना शुरू करेंगे, तो जीवन कैसा हो जाएगा? बहुत सुंदर हो जाएगा। इसलिए वो कहानी याद आती है एक बार एक व्यक्ति ने भगवान को बहुत याद किया, खूब भक्ति किया, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा मांगो, जो मांगोगे मिलेगा। तो अब व्यक्ति ने सोचा कि सब कुछ मांग लेना है, तो भगवान से कहा कि भगवान मुझे ऐसी कोई विधि बताओ सदा सुखी होने की, मैं जीवन में दुखी नहीं होना चाहता, सदा सुखी होने की विधि बताओ। भगवान ने कहा बस। तो कहा बस सदा सुखी होना चाहता हूँ। तो भगवान ने कावड़ दिया, कावड़ ये आजकल बहुत निकलते हैं ना, कावड़ लेकर के दौड़ते रहते हैं गंगा जल लेकर के, तो कावड़ दिया। और कावड़ में एक तरफ काला कपड़ा था, एक तरफ सफेद कपड़ा था। तो वो कावड़ दिया और कहा ये सफेद कपड़ा आगे रखना, काला कपड़ा पीछे रखना और सदा सुखी हो जाएगा। तो मनुष्य ने कहा भगवान मजाक कर रहे हो आप मेरी, ये कावड़ में सफेद कपड़ा आगे काला कपड़ा पीछे रखने से मैं सुखी कैसे हो जाऊंगा? तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि देखो जीवन की यात्रा में जैसे जैसे तुम चलोगे बहुत लोगों से मिलना होगा, और जब बहुत लोगों से मिलोगे ना तो हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है। जब तुम्हें किसी की बुराई दिखाई दे, गलती से भी अगर बुराई दिखाई दे तो उसको पीछे डाल देना ये काले कपड़े में, और जब तुम्हें अच्छाई दिखाई दे तो उसको आगे रख देना सफेद कपड़े में, और जब तुम व्यवहार करो ना तो उसी सफेद कपड़े में जो अच्छाई रखी है ना उसी के आधार से व्यवहार करना है ना, तो तुम सदा सुखी हो जाएंगे। उसने कहा ये तो ठीक है। उसने जीवन में चलना शुरू किया और शुरू किया, जिसका भी कमी कमजोरी दिखाई देती पीछे डाल देता था, आगे अच्छाई दिखाई देती थी आगे रख देता था, और सचमुच उसी के आधार पर व्यवहार करता था, सुखी होता गया। एक दिन वो मनुष्य सोया हुआ था गहरी नींद में अचानक भूकंप आया, इतना जोर का भूकंप था कि उठ करके दौड़ा, अपना कावड़ लेकर के बाहर दौड़ा और गलती से काला कपड़ा आगे हो गया सफेद कपड़ा पीछे हो गया। अब जिसकी भी बुराई दिखाई दे सामने रखे और उसी के आधार पर व्यवहार करे, अच्छाई दिखाई दे पीछे डाल दे। अब बुराई के आधार पर व्यवहार करेगा तो सुखी होगा कि दुखी होगा? तब से लेकर के दुखी होना चालू हो गया। चक्र की बात है ना, सत्युग त्रेता में सुखी दे। फिर द्वापर से हम लोग ने क्या कर दिया, कावड़ ही बदली कर दिया, काला कपड़ा आगे सफेद कपड़ा पीछे हो गया, तब से दुखी होते गए है ना। और फिर भगवान को गाते रहे, हे प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, मेरे अवगुण चित न धरो। भगवान कहता है मैं तेरे अवगुण चित नहीं धरूंगा, लेकिन तब जब तू भी किसी के अवगुण चित न धरो, किसी के अवगुण चित न धरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, कावड़ बदली करो, सफेद कपड़ा आगे काला कपड़ा पीछे। तो आज के बाद सभी अपना कावड़ बदली कर देंगे, कावड़ बदली कर लेंगे। यहाँ से जब जाओ तो सफेद कपड़ा आगे काला कपड़ा पीछे, किसी के भी अवगुण चित न धरो, किसी के भी अवगुण चित न धरो, और जितनी भी अच्छाई इकट्ठी कर सको आगे ही रखना, और अपने जीवन में भी उसको उसके एनर्जी को उसके प्रवाह को आने देना, जीवन सदा सुखी हो जाएगा, जीवन सदा सुखी हो जाएगा। तो स्वदर्शन और सुदर्शन, खुद को देखो तो स्वदर्शन, दूसरों को देखो तो सुदर्शन, अच्छाइयों का दर्शन। ये व्यवहार में रहने की, गृहस्थ जीवन में प्रवृत्ति मार्ग में रहने की, या व्यवहार कुशल होने की विधि है ना।
फिर तीसरा है गदा। गदा हमें मिली है ज्ञान की गदा, इसीलिए कहते हैं कि गदा जब ऊपर होती है ना, हनुमान जी के हाथ में ऊपर है, लड़ने जाने का प्रतीक है। जब लड़ाई के मैदान में जाते हैं तो गदा ऊपर होती है, जब विजयी होके आते हैं तो गदा नीचे होती है। तो हम सभी आत्माएं भी ज्ञान के पॉइंट्स का एप्लीकेशन करते हुए, ज्ञान की एक एक पॉइंट को यूज करते हुए, हर प्रकार की परिस्थिति के ऊपर विजयी आत्मा। तो गदा नीचे, ज्ञान को यूज करते जाओ। इतना सुंदर बाबा ने ज्ञान दिया है, हर ज्ञान की पॉइंट को यूज करेंगे तो हर परिस्थिति, हर समस्या के ऊपर विजयी आत्मा बन जाएंगे। और चौथा, तब जीवन कैसा हो जाएगा? जीवन कमल पुष्प हो जाएगा, कमल पुष्प की तरह हो जाएंगे, निर्लिप्त जीवन। कीचड़ में रहने के बाद भी, उस संसार में रहने के बाद भी, संसार से न्यारा और प्यारा जीवन, इतना सुंदर जीवन बन जाएगा आपका। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि ये प्रवृत्ति मार्ग में रहने की विधि है, कि कैसे ये चारों अलंकार जीवन के अंदर धारण करना है, और जीवन में धारण करते हुए जीवन को बैलेंस्ड, बैलेंस्ड लाइफ, क्योंकि आनंद का दूसरा आधार है बैलेंस। इसलिए बाबा की हर मुरली में हम सुनते हैं, जहां बैलेंस है वहां ब्लिस है, ब्लिस यानी आनंद, और वहां ही सबकी दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स है। तो बैलेंस, ब्लेसिंग्स और ब्लिसफुल लाइफ। तो आनंद भयो, आनंद वाला जीवन जीना है तो बैलेंस जीवन जियो, सबकी दुआएं मिले ऐसे कर्म करो, और तब ब्लिसफुल लाइफ का अनुभव कर सकेंगे। तो ये है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का मतलब हम ब्राह्मणों के जीवन के अंदर, और जब ऐसी जन्माष्टमी मनाएंगे तो ये तो एक एक आत्मा की कहानी नहीं है, सभी देव की, देव कुल की आत्माओं की कहानी है। कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ हम सबका भी जन्म हुआ कि नहीं हुआ? हम सबका जन्म है। जन्माष्टमी खाली एक का थोड़ी है, हम सब जो अष्ट रतन बनने वाली आत्माएं हैं, 108 रतन में जाने वाली आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं की अष्टमी है या नहीं है? इतनी सुंदर हम सबकी जीवन है, तो ये हमारा ही यादगार है, और ये हमारे ही एक एक जीवन के पल पल का, संगम योगी जीवन के पल पल का यादगार है। तो कौन सा मक्खन चुराया, कौन सी हर परिस्थिति रूपी अकासुर बकासुर को मारा, ये सब हम सबका यादगार है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
छाओ बनकर लहरों में कभी नाव बनकर धूप में कभी छाओ बनकर लहरों में कभी नाव बनकर लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ जब भी छाने लगे अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा जब भी छाने लगे अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा हर लम्हा दीप बन के जले कांटों पे भी मेरे संग संग चले अब तो लगता है जन्नत बनी हयात मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा